नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
भीष्म पितामह सुना रहे हैं कि अम्बा थी, वो अपने नाना जी से मिली तो नाना जी ने कहा कि बेटा परशुराम जी से हम निवेदन करेंगे, तो परशुराम जी वहीं आ गए जहां ये चर्चा हो रही थी। फिर परशुराम जी आए मेरे यहां हस्तिनापुर, फिर हम आए कुरुक्षेत्र, गंगा जी भी आई, परशुराम जी से कहने लगी कि मेरे बेटे के साथ क्यों युद्ध करो, ये तो आपका चेला है। परशुराम जी ने कहा कि तुम भीष्म को तो रोकते नहीं, मेरे को रोकती हो, ये मेरी बात नहीं मानता है। तब मां ने मुझे कहा कि बेटा तुम अपने गुरु की बात मान लो, तो कहा कि हमारे गुरु जी ने यही बात कही है, जीवन में जब कभी जिस बात को एक बार त्याग दिया है उसको दोबारा स्वीकार नहीं करना चाहिए, गुरु जी को ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए। इतनी बातें हो गई, आगे क्या होता है वो बताते हैं। हम दोनों आपस में रणभूमि में खड़े हो गए। परशुराम जी से कहा मैंने परशुराम जी से कहा, हे ऋषिवर, आप पृथ्वी पर खड़े हैं इसलिए मैं रथ में चढ़कर आपके साथ युद्ध नहीं कर सकता। यदि आप मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं तो आप भी एक रथ पर चढ़िए, आप भी कवच धारण कीजिए। परशुराम जी ने मुस्कुराकर कहा, मेरे प्रिय शिष्य भीष्म, पृथ्वी मेरा रथ है, वेद मेरे घोड़े हैं, वायु मेरा सारथी है, वेद माता गायत्री सावित्री और सरस्वती ये मेरे कवच हैं, उनके द्वारा अपने शरीर को सुरक्षित करके मैं युद्ध करूंगा। परशुराम जी महाराज की बात सुनकर मैं आश्चर्य में डूब गया। मन में भी मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि मेरे गुरु परशुराम जी कितने विलक्षण रथ में बैठे हुए हैं। फिर परशुराम जी ने एकदम आग उगलने वाले बाण मेरी ओर ढकेल दिए और थोड़ी देर में देखा कि वे एक रथ पर चढ़े हुए हैं। एक बार मुझे आश्चर्य हुआ कि अभी तो रथ था ही नहीं, तो दूसरा ही रथ बता रहे थे, ये रथ कहां से आ गया। बाद में मुझे ज्ञान हुआ कि उन्होंने अपने मन से ही पैदा कर लिया। वह बड़ा ही विचित्र था, नगर के समान विशाल, उत्तम उत्तम शस्त्र अस्त्र रखे हुए, दिव्य घोड़े जुते हुए, उनके शरीर पर सूर्य और चंद्रमा के चिन्ह से सुशोभित कवच, हाथ में धनुष और पीठ पर तरकस, और उनके सारथी का काम उनका प्रिय सखा अकृत व्रण कर रहा था। अकृत व्रण, वे मुझे हर्षित करते हुए युद्ध के लिए पुकार रहे थे, भीष देखो मेरा रथ, करो मुझसे युद्ध, अब देखो मेरे बाण तेरी ओर आ रहे हैं। तीन बाण छोड़े, मैंने उसी समय घोड़ों को रुकवाया और धनुष को नीचे रख दिया, रथ से उतरकर पैदल पैदल उनके पास गया और उनका सम्मान करने के लिए उनके चरणों में मैंने अपना शीश रखा और मैंने निवेदन किया, हे गुरुवर, हे मुनिवर, आप मेरे गुरु हैं, अब मुझे आपके साथ युद्ध करना पड़ेगा। आज तक आपने सदा मुझे विजयी होने का आशीर्वाद दिया है, अतः आज भी आप मुझे विजयी होने का आशीर्वाद दीजिए। मेरे पास आपके आशीर्वाद का सबसे बड़ा शस्त्र है, और शस्त्र तो मेरी ताकत का हो सकता है, उसमें कहीं मैं त्रुटि भी कर सकता हूं। ये आपका जो आशीर्वाद रूप शस्त्र है ये मेरे लिए बहुत काम का है। परशुराम जी ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ भीष्म, तुम्हारी इस विनम्रता, शालीनता और सफलता चाहने वाले पुरुषों की ऐसी क्रियाएं बहुत ही आनंद देने वाली है। अपने से बड़ों के साथ यही धर्म होता है। यदि इस प्रकार तुम मेरे पास नहीं आते तो मैं तुम्हें श्राप दे देता। आप तुम सावधानी से युद्ध करो। परंतु भीष्म क्या करो, आशीर्वाद तो नहीं दे सकता, विजयी होने का आशीर्वाद तो नहीं दूंगा। तुम किसी और के साथ युद्ध करते तो मैं तुझे आशीर्वादों से लाद देता, पर मेरे से युद्ध करते हो और मैं तुम्हें जीतने के लिए आया हूं, आशीर्वाद कैसे दूं? आशीर्वाद दूं तो मैं युद्ध ही क्यों करूं? और तुम्हें आशीर्वाद मांगने पर नहीं दूं तो मैं कैसा गुरु? मेरे लिए तो धर्म संकट हो गया। मैं तुमको आज्ञा देता हूं। उस युद्ध में परशुराम जी ने मेरे ऊपर 169 बाण छोड़े। तब मैंने भाले की जाति का एक तीक्ष्ण बाण छोड़कर उनके धनुष का किनारा काट कर गिरा दिया और 100 बाण छोड़कर उनके शरीर को बीन दिया। वो बाण उनके आर पार हो गए, उनके शरीर से खून की धाराएं निकलने लगी। वे पीड़ित हो गए, अचेत हो गए और यूं घूमते घूमते पृथ्वी पर धड़ाम से गिर गए। मुझे बड़ी दया आई और फिर धैर्य धारण करके कहा, गुरुदेव, यदि आपको इस समय होश हो तो मेरी बात सुनिए। यह युद्ध और क्षात्र धर्म, इन दोनों को धिक्कार है। इतना पवित्र संबंध भी जहां बाणों के द्वारा निभते हो, ऐसा क्षात्र धर्म किस काम का? मैंने उन पर फिर कोई बाण नहीं छोड़ा। इतने में ही सूर्य भगवान ढलते गए, अस्ताचल की ओर चले गए। हमारा युद्ध बंद हो गया। रात भर मैंने गुरुदेव की सेवा की। गुरुदेव होश में आ गए और फिर प्रातःकाल हुआ। प्रतापी परशुराम जी मेरे ऊपर दिव्य अस्त्र छोड़ने लगे। युद्ध हुआ किंतु मैंने अपने साधारण अस्त्रों से उनके दिव्य अस्त्रों को रोक दिया। फिर मैंने परशुराम जी पर वायव्यास्त्र छोड़ा, पर उन्होंने उसे गुह्यकास्त्र से काट दिया। फिर मैंने अभिमंत्रित करके आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया, परशुराम जी ने वारुणास्त्र से उसको रोक दिया। इस प्रकार मैं परशुराम जी के दिव्य अस्त्रों को रोकता रहा और शत्रु दमन परशुराम जी मेरे दिव्य अस्त्रों को विफल करते रहे। तब उन्होंने क्रोध में भरकर मेरी छाती में बाण मारे और मैं चक्कर खाकर रथ से गिर गया। उस समय मुझे अचेत देखकर तुरंत ही सारथी रणभूमि से अलग ले गया। चेत होने पर जब मुझे सब बातों का पता लगा तो मैंने सारथी से कहा, ए सारथी, अब मैं युद्ध के लिए तैयार हूं, परशुराम जी के पास ले चल। बस सारथी तुरंत ही लेकर चल दिया और कुछ ही देर में परशुराम जी के पास पहुंच गया। वहां पहुंचते ही मैंने उनका अंत करने के विचार से एक चमचमाता हुआ काल के समान कराल बाण छोड़ा। उसकी गहरी चोट से परशुराम जी अचेत होकर रणभूमि में गिर गए। इससे सब लोग जो देखने वाले थे सब जगह हाहाकार मच गया। परशुराम जी मूर्छा टूटने पर खड़े हो गए और अपने धनुष बाण चढ़ा दी, बड़ी विवलता से कहने लगे, भीष्म खड़ा रहे, अब मैं तुझे इस बाण से नष्ट कर देता हूं। धनुष छूटने पर वो बाण मेरे दाएं कंधे में लगा, उसके प्रहार से मैं झोंके खाते हुए वृक्ष के समान विफल होकर गिर पड़ा और फिर तत्काल खड़ा होकर बड़ी फुर्ती से बाण बरसाने लगा, किंतु ये बाण अंतरिक्ष में रह गए। मेरे और परशुराम जी के बाणों ने आकाश को ऐसा ढांप दिया कि पृथ्वी पर सूर्य का ताप पड़ना बंद हो गया, वायु की गति रुक गई। इस प्रकार असंख्य बाण पृथ्वी पर गिरने लगे। परशुराम जी ने मुझ पर असंख्य बाण छोड़े और मैंने भी सर्प के समान बाणों से उन्हें काट काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार से अगला दिन भी हमारा घोर संग्राम में बीत गया। रात को हम दोनों फिर आपस में एक दूसरे के घाव को मिटाने में लगते थे, सेवा में लगते थे और बड़े प्रेम से गुरु शिष्य की बातें होती थी। और फिर युद्ध होता, दूसरे दिन सूर्योदय के बाद युद्ध, तो वही बाण चलते। रोज मेरे ऊपर दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते और रोज मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर उनके अस्त्रों को काट देता। दिव्यास्त्र उनके नष्ट होने लगे और वो भी मेरे साथ बड़े कुपित होकर प्राणपण से युद्ध करने लगे। दिन भर बड़ा भीषण युद्ध होता। फिर सूर्य भगवान अस्त हो गए, रात आई, रात में बड़ी ठंडी ठंडी पवन चलने लगी, हमारा युद्ध रुक गया। इस प्रकार से एक दो तीन नहीं 23 दिन तक हमारा संग्राम हुआ। रोज सवेरे बस उठते, सूर्योदय होता, युद्ध करते, सायंकाल होता, रुक जाते। उस रात में ब्राह्मण पितर देवता आदि को नमस्कार करके एकांत में शैया पर पड़ा हुआ विचार करने लगा, परशुराम जी से मेरा भीषण युद्ध होते आज बहुत दिन हो गए। परशुराम जी बड़े पराक्रमी हैं, उन्हें मैं युद्ध में जीत नहीं सकता। यदि उन्हें जीतना मेरे लिए संभव हो तो आज रात्रि में देवता लोग प्रसन्न होकर के मुझे दर्शन देवे। इस प्रकार प्रार्थना करके मैं दाई करवट सो गया। स्वप्न में मुझे 8 ब्राह्मणों ने दर्शन दिया और चारों ओर से घेर करके कहा, भीष्म खड़े हो जाओ, डरो मत, तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है, हम तुम्हारी रक्षा करते हैं, क्योंकि तुम हमारे अपने ही शरीर हो। परशुराम तुम्हें युद्ध में किसी प्रकार नहीं जीत सकता। देखो ये प्रस्वाप नाम का अस्त्र है, इसके देवता प्रजापति हैं, इसका प्रयोग तुम स्वयं ही जान जाओगे, क्योंकि अपनी पूर्व देह में तुम्हें ये ज्ञान था, इसे परशुराम जी अथवा पृथ्वी पर कोई दूसरा मनुष्य जानता नहीं है। उस प्रस्वाप नाम के अस्त्र का स्मरण करो और इसका प्रयोग करो, यह स्मरण करते ही तुम्हारे पास आ जाएगा, इससे परशुराम जी की मृत्यु भी नहीं होगी और वो युद्ध भी नहीं कर पाएंगे, तुम्हें कोई पाप भी नहीं लगेगा। इस प्रकार ये ऐसा अस्त्र है, इसकी पीड़ा से अचेत हो जाएंगे, सो जाएंगे। इस प्रकार उसे परास्त करके तुम संबोधनास्त्र से फिर जगा देना। बस अब सवेरे उठकर तुम यही काम करो। मरे और सोए हुए पुरुष को तो हम समान ही समझते हैं, परशुराम की मृत्यु तो कभी नहीं हो सकती और मृत्यु तो तुम्हारी भी इच्छा मृत्यु है, तुम्हारी भी नहीं हो सकती। परशुराम की मृत्यु तो कभी नहीं हो सकती, अतः उनका सो जाना मृत्यु के समान ही है। ऐसा कहकर 8 ब्राह्मण अंतरित हो गए। उन 8 के समान रूप थे, बड़े तेजस्वी थे, एक जैसी सकल सूरत थी। सुबह में जगा और मुझे स्वप्न की बात याद आई, बड़ी प्रसन्नता हुई। थोड़ी देर में हमारा तुमुल युद्ध छिड़ गया। उसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते थे। परशुराम जी मेरे ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे और मैं अपने बाण समूह से उनको रोकता चला गया। इतने में ही उन्होंने अत्यंत क्रोध में भरकर मेरे ऊपर एक काल के समान कराल बाण छोड़ा, सर्प के समान सनसनाता हुआ मेरी छाती में लगा। इससे मैं लहूलुहान होकर पृथ्वी पर गिर गया। चेत होने पर मैंने एक वज्र के समान प्रज्वलित शक्ति छोड़ी, वह उन विप्रवर की छाती में जा लगी। इससे भी तिलमिला उठे और कष्ट से कांपने लगे। सावधान होने पर उन्होंने मेरे पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उसके नष्ट करने के लिए मैंने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों तरफ की आग पैदा हो गई, दोनों आपस में टकरा गए और उनसे बड़ा भयंकर तेज निकला। सारे प्राणी आकुल व्याकुल हो गए। तब ऋषि मुनि गंधर्व देवता उन लोगों को बड़ी पीड़ा हुई, पृथ्वी डगमगाई, प्राणियों को कष्ट हुआ, आकाश में आग लग गई, दसों दिशाओं में धुआं भर गया। देवता असुर राक्षस हाहाकार करते इधर उधर जान बचाने के लिए दौड़ने लगे। इसी समय फिर मैंने प्रस्वाप नाम का अस्त्र छोड़ने का हुआ और संकल्प करने के लिए मैंने विचार किया। इतने में आकाशवाणी से नारद जी ने मुझे कहा, हे भीष्म देखो, आकाश में देखो, ये देवता लोग तुम्हें प्रस्वाप अस्त्र को रोकने की बात कहते हैं। तुम ये प्रस्वापास्त्र प्रयोग मत करो। परशुराम जी तुम्हारे तपस्वी ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण और तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हें किसी प्रकार उनका अपमान नहीं करना चाहिए। उसी समय वे स्वप्न में दिखाई देने वाले आठों ब्रह्मवादी ब्राह्मण भी दिखाई दिए। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझसे धीरे से कहा, भरत श्रेष्ठ, हमने तुमको स्वप्न में जैसी आज्ञा दी थी, अब जैसा नारद जी कहते हैं वैसा करो। नारद जी के वचनों में हम लोग सहमत हैं, इनका कथन लोक कल्याणकारी है। मैंने उनकी बात सुन ली और अपना अस्त्र धनुष से उतार दिया और विधिवत ब्रह्मास्त्र को ही फिर प्रकट किया। मैंने प्रस्वापास्त्र को जब उतार लिया तो वो देख करके परशुराम जी बड़े प्रसन्न हुए और सहसा कह उठे, मेरी बुद्धि कुंठित हो गई, भीष्म ने मुझे पराजित कर दिया। इतने में ही उन्होंने अपने पिता जमदग्नि, अपने माननीय दादाजी को भी देखा। वे कहने लगे, भाई परशुराम, ऐसा साहस फिर कभी मत करना, क्योंकि तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण का परम धन स्वाध्याय और व्रतचर्या है, युद्ध करना ब्राह्मण का काम नहीं है, क्षत्रियों का काम है। भीष्म के साथ तुमने इतने दिन तक युद्ध कर लिया, बहुत हो गया, अब अधिक हट मत करो, कहीं अधिक हट करने से तुम्हें नीचा देखना पड़ सकता है, तुम रणभूमि से हट जाओ, इस धनुष को त्याग कर अब घोर तपस्या करो। देखो इस समय भीष्म को भी देवताओं ने रोक दिया है और तुमको रोकने के लिए हम आए हैं। उन्होंने बार बार मुझसे कहा, भीष्म, परशुराम तुम्हारे गुरु हैं, गुरु के चरणों में अस्त्र ले जाकर रख दो, उनके साथ बराबरी में युद्ध मत करो, संग्राम में परशुराम को परास्त करना तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता। पितरों की बात सुनकर परशुराम जी ने कहा, हे पितरों, मेरा नियम है, मैं युद्ध में पीछे पैर नहीं रख सकता। मैंने कितने ही संग्राम किए हैं लेकिन मैंने कभी पीठ नहीं दिखाई। यदि भीष्म की इच्छा हो तो वे भले ही युद्ध को मैदान में छोड़ दें, मैं बैन पीठ दिखाने वाले भीम को कभी नहीं मारूंगा, भीष्म को नहीं मारूंगा। भीष्म युद्ध भूमि से चला जाए, मैं नहीं जा सकता। सुन दुर्योधन, उस समय ऋषि आदि मुनिगण मेरे पास आए, नारद जी भी आए और कहने लगे, भीष्म तुम अपने गुरु का सम्मान रख लो ना, और तुम यहां से रवाना हो जाओ ना, युद्ध बंद करो, सारे संसार को बड़ी शांति मिलेगी, गुरु के सामने पीठ दिखाने में तुम्हारा कौन सा अपमान होता है। तब मैंने कहा, हे ऋषिवर, मेरा ये नियम है कि पीठ पर बाणों की बौछार सहते हुए युद्ध से कभी मुख नहीं मोड़ सकता। ये मेरा निश्चित विचार है कि लोभ से, भय से, कृपणता से या और किसी कारण से मैं युद्ध में पीठ दिखाऊं और अपने सनातन धर्म का त्याग करूं, इसमें मेरे गुरु का ही अपमान होगा, क्योंकि मेरे गुरु यही परशुराम जी महाराज युद्ध में ऐसे कभी भी पीठ दिखाने की बात नहीं बोले। नारदादि ऋषियों ने कहा, ये तो गुरु के सामने तो पीठ दिखाते हैं, नहीं, शिक्षा होती है। उस समय उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैं पीठ, मेरे सामने पीठ दिखा देना, उस समय ये नहीं कहा है। समय का क्षात्र धर्म का पालन करो। ऋषि सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। फिर मेरी माता भी वहां आ गई और मैं तो उसी प्रकार धनुष पर बाण चढ़ाया हुआ था। तब परशुराम जी से कहा, भृगुनंदन, ब्राह्मणों का हृदय ऐसा विनय शून्य नहीं होना चाहिए, तुम शांत हो जाओ परशुराम, युद्ध बंद करो, न तो भीष्म का तुम्हारे हाथ से मारा जाना उचित है और न भीष्म को ही तुम्हारा वध करना चाहिए। ऐसा कहकर दोनों कहते, तुम शस्त्र रख दो, बीच में खड़े हो, तुम भी शस्त्र रखो, तुम भी शस्त्र रखो, दोनों ने शस्त्र रख दिए। इतने में ही मुझे वो आठ फिर वो ब्रह्मवादी ब्राह्मण दिखाई दिए। उन्होंने मुझसे कहा कि हे भीष्म, तुम परशुराम जी के पास जाओ और लोगों का मंगल करो। मैंने देखा परशुराम जी युद्ध से हट रहे हैं, तो मैंने लोगों के कल्याण के लिए पितरों की बात मान ली। परशुराम जी बहुत घायल थे, मैंने उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और उन्होंने मुस्कुरा करके बड़े प्रेम से कहा, आओ भीष्म, तुम्हारी वीरता से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं। उन्होंने अपने बाहों में लेकर मुझे छाती से लगाया और कहा कि इस संसार में तुम्हारे समान दूसरा कोई क्षत्रिय नहीं है, इस युद्ध में तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया है, जाओ भीष्म, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम जाओ। भीष्म जी कहने लगे कि हे दुर्योधन, उसके बाद मेरे सामने परशुराम जी ने उस कन्या को माने अंबा को बुलाकर कहा, सब महात्माओं के ऋषि मुनियों के बीच में कहा, हे अंबे, इन सब लोगों के सामने मैंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया, मेरी अधिक से अधिक शक्ति इतनी है जो तुमने देख ली है, अब मैं तुमको बचा नहीं सका हूं, भीष्म को मैं दबा नहीं सकता हूं, अब तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां चली जाऊं, इसके सिवा बता मैं तेरा और क्या काम कर सकता हूं, मेरे विचार से तू अब भीष्म की ही शरण ले ले, जैसा भीष्म कहे वैसा मान ले, इसके सिवा तेरे पास कोई उपाय नहीं है। मुझे तो भीष्म ने बड़े बड़े अस्त्रों का प्रयोग करके युद्ध में हरा दिया है। तब उस कन्या ने कहा, हे भगवान, आप जैसा कह रहे हैं वो ठीक है, मैं उसे सिर में और हृदय में धारण करती हूं, आपने अपने बल और उत्साह के अनुसार मेरा काम करने में कोई कसर नहीं रखी, परंतु अंत में आप युद्ध में भीष्म से बढ़ नहीं सके, तथापि अब मैं फिर किसी प्रकार भीष्म के पास तो नहीं जाऊंगा, अब मैं ऐसी जगह जाऊंगी जहां रहने से मैं स्वयं ही भीष्म का युद्ध में संहार कर सकूं, ऐसी जगह जाऊंगी। ऐसा कहकर हे दुर्योधन, वो कन्या मेरे नाश के लिए तपस्या का विचार करके वहां से चली गई। परशुराम जी मुझसे कहकर सब मुनियों के साथ महेंद्र पर्वत पर चले गए और मैं रथ पर सवार होकर कुरुक्षेत्र से हस्तिनापुर चलाया। मैंने अपना सारा वृत्तांत माता सत्यवती को सुना दिया। माता ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैंने उस कन्या के समाचार भी बता दिए। इधर वो कन्या क्या करती है, मैंने मेरे गुप्तचर छोड़ दिए। वे मेरे हित के लिए बड़ी सावधानी से उसका आचरण व्यवहार सब मुझे सुनाते थे। कुरुक्षेत्र से चलकर वो कन्या यमुना तट पर एक आश्रम में गई। वहां अलौकिक तप करने लगी। 6 महीने तक केवल वायु पी करके काठ के समान खड़ी रही। 1 साल तक निराहार रहकर यमुना जल में खड़ी रही। फिर 1 वर्ष तक अपने आप झड़कर गिरा हुआ पत्ता खाकर पैर के अंगूठे पर खड़ी रही। इस प्रकार 12 वर्ष तपस्या करके उसने आकाश और पृथ्वी में हड़कंप मचा दिया। उसके पश्चात 8वें या 10वें महीने जल पीकर निर्वाह करने लगी। फिर तीर्थ सेवन के लोभ से इधर उधर घूमती रही और वत्स देश पहुंची। वहां अपने तपस्या के प्रभाव से वह आधे शरीर से तो अंबा नाम की नदी हो गई और आधे अंग से वत्स देश के राजा की कन्या होकर उत्पन्न हुई। माने उसके शरीर के 2 विभाग, एक तो नदी और एक राजा की कन्या। इस जन्म में भी उसे तप का आग्रह करते देख समस्त तपस्वियों ने उसे रोका और कहा, अरे तुझे क्या करना है तपस्या करके। उसने कहा, भीष्म ने मेरा निरादर किया है, मुझे पति धर्म से भ्रष्ट किया है, अतः मैंने कोई दिव्य लोक पाने के लिए नहीं भीष्म का वध करने के लिए तपस्या का संकल्प किया है। मेरा ये निश्चय है कि भीष्म के मारे जाने पर मुझे बड़ी शांति मिलेगी। मैं तो भीष्म से बदला लेने के लिए तपस्या कर रही हूं, अतः आप लोग मुझे रोको मत। तब उन महर्षियों के बीच में उमापति भगवान शंकर ने उस तपस्विनी को दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। उस कन्या ने मेरी पराजय करने का ही वरदान मांगा। इस पर महादेव जी ने कहा, तू भीष्म का नाश कर सकेगी। तब मैंने कहा, भगवान मैं तो स्त्री हूं, इसलिए मेरा हृदय भी अत्यंत शौर्यहीन है, इतने बड़े भीष्म को युद्ध में कैसे जीत सकूंगी। आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं संग्राम में शांतनुनंदन भीष्म को मार सकूं। भगवान शंकर बोले, बेटी तुम्हारी बात असत्य तो नहीं है, इसलिए तू अवश्य ही भीष्म का वध तो करेगी, लेकिन स्त्री शरीर से नहीं करेगी, तुझे दूसरा शरीर धारण करना पड़ेगा, तुझे पुरुषत्व प्राप्त होगा। इन बातों को याद रखेगी तो तू उनको प्राप्त कर ले, उनके ऊपर विजय कर ले। तू द्रुपद के यहां जन्म लेकर एक चित्र योधी वीर सम्मत महारथी बनेगी। मैंने जो कुछ कहा है वो सब वैसे ही होगा। तू कन्या रूप से जन्म लेकर कुछ समय बीतने पर अपने आप पुरुष हो जाएगी। ऐसा कहकर भगवान शंकर अंतरित हो गए। उस कन्या ने एक बड़ी चिता बनाकर अग्नि प्रज्वलित की और मैं भीष्म का वध करने के लिए अग्नि में प्रवेश करती हूं, ऐसा कहकर उसमें प्रवेश कर गई। दुर्योधन ने पूछा, पितामह इतनी बड़ी घटना हुई, हम लोगों को कुछ पता ही नहीं, क्या वो अंबाई ये शिखंडी बना हुआ है क्या। हाँ पितामह, भीष्म भी यही शिखंडी बना हुआ है। तो ये तो स्त्री है, फिर ये इसको पुरुषत्व कैसे मिल गया। भीष्म जी कहने लगे, राजन महाराज द्रुपद की रानी के पहले कोई बेटा नहीं था, तब द्रुपद ने संतान की प्राप्ति के लिए तपस्या करके भगवान शंकर को ही प्रसन्न किया। तब महादेव जी ने कहा कि देखो तुम्हारे एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो पहले स्त्री होने पर भी पीछे पुरुष हो जाएगा, अब तुम तपस्या बंद करो, मेरी वाणी पर विश्वास करो, मेरी वाणी कभी झूठी नहीं होगी। तब राजा ने नगर में जाकर रानी को अपनी तपस्या और महादेव जी के वरदान की बात सुनाई। समय आने पर रानी ने गर्भ धारण किया और यथा समय एक रूपवती कन्या को जन्म दिया, किंतु लोगों में ये प्रसिद्ध कर दिया कि रानी के पुत्र हुआ है, बड़ा सुंदर पुत्र है। राजा ने उसको छिपाए रखा और उसकी भाषा में बोली में स्त्री शब्द आने ही नहीं दिया, पुत्र के समान ही सबको बताए रखा। उस नगर में द्रुपद के सिवा और उसकी माँ रानी के सिवाय कोई इस रहस्य को नहीं जानता था, कारण कि उसको महादेव जी की बात पर विश्वास था कि आज भले ही एक कन्या हो, लेकिन ये जब आगे पुरुष होने ही वाली है तो फिर मैं इसको पहले से कन्या क्यों बताऊं, महादेव जी की वाणी है। तो उस पुत्र का नाम उन्होंने शिखंडी रखा। अकेले मुझे ही नारद जी के कथन, देवताओं के वाक्य और अंबा की तपस्या के कारण से इस रहस्य का पहले से ही मालूम था। इधर राजा द्रुपद ने अपनी कन्या को, जो लोक में पुत्र में प्रसिद्ध था, लिखना पढ़ना शिल्प कला विद्याएं सिखाने का प्रयत्न किया। बाण विद्या के लिए वह द्रोणाचार्य जी के पास शिष्यत्व के रूप में आई। एक बार रानी ने कहा, महाराज महादेव जी की बात किसी प्रकार मिथ्या तो नहीं हो सकती है, फिर भी मैं जो बात कहती हूँ आपको भी यदि उचित जान पड़े तो कीजिए, आप विधि पूर्वक अब इस कन्या का विवाह कर दीजिए। महादेव जी की बात सत्य होकर तो रहेगी, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, इसलिए आप इसे पुत्र मान करके विवाह कीजिए। उन दोनों ने, राजा रानी ने निश्चय कर लिया और फिर दशारण देश का राजा हिरण्यवर्मा था, उसकी एक बड़ी सुंदर कन्या थी, उस कन्या के साथ अपने कहलाने वाले पुत्र शिखंडी के साथ विवाह कर दिया, जबकि शिखंडी भी लड़की और दशारण देश का राजा भी लड़की, और किसी को पता नहीं, हिरण्यवर्मा राजा दशारण देश का राजा, उसको पता नहीं कि मेरी लड़की का लड़की के साथ ही विवाह हो रहा है। बड़े धूमधाम से विवाह के बाद शिखंडी कांपिल्य नगर में आकर रहा, वहां वे दोनों साथ रहने लगे। तब उस कन्या को मालूम हुआ कि अरे ये तो स्वयं स्त्री है। तब उसने अपने धाइयों सखियों और इनके सामने बड़े संकोच के साथ ये बात प्रकट कर दी कि भाई मेरा लड़के के साथ विवाह नहीं हुआ है, लड़की के साथ विवाह हुआ है। अब ये बात फैलते फैलते राजा के पास पहुंची, दूतियों के पास समाचार गया और वहां से फैलता फैलता दशारण राजा के पास गया। दशारण राजा क्रोध में भर गया और द्रुपद के पास अपना दूत भेजा। दूत ने राजा द्रुपद के पास जाकर एकांत में कहा, महाराज आपने दशारण देश के राजा हिरण्यवर्मा को धोखा दिया है, उनकी कन्या और आपकी कन्या का विवाह करके उनका घोर अपमान किया है, इसलिए उन्होंने क्रोध में आकर के कहा है कि आपने मोह के कारण अपनी कन्या के साथ मेरी कन्या का विवाह कर जो मेरा अपमान किया है, अब तुम्हारे इस खोटे विचार का तुम्हें खोटा परिणाम भोगना पड़ेगा। अब मैं इस धोखे का फल आप भोगने के लिए तैयार हो जाओ, अब मैं तुम्हारे सारे कुटुंब मंत्री राज्य सबको नष्ट करूंगा। हे दुर्योधन, दूत की ये बात सुनकर द्रुपद का मुंह ऐसे ही बंद हो गया जैसे किसी चोर को चोरी करते हुए पकड़ा जाए और उससे पूछा जाए कि क्या कर रहा है तो वो क्या कहेगा। द्रुपद का मुंह बंद हो गया। महादेव जी के आशीर्वाद को अपने अंदर विश्वास में लेकर कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, यदि मेरी कन्या है और मैं आपकी कन्या के साथ विवाह करूंगा तो क्या इसमें मेरा भी अपमान नहीं है? कौन कहता है कि मेरी कन्या कन्या है? दूत को कहा कि नहीं, आप हमारे समधी के पास झूठी खबर किसी ने पहुंचाई है, आप किसी प्रकार से इन बातों में मत आओ। किंतु हिरण्यवर्मा ने फिर भी पक्का पता लगा लिया कि नहीं, ये पांचाल राज की पुत्री है, द्रुपद की पुत्री है, पुत्र नहीं है। तब उसने पांचाल देश पर चढ़ाई करने के लिए नगर के ऊपर सेना चारों तरफ से घेर दी। साथी राजाओं ने कहा, यदि शिखंडी कन्या हो तो हम पांचाल नरेश को यहां कैद करेंगे और पांचाल देश से इस द्रुपद को हटाकर हिरण्यवर्मा को राजगद्दी पर बैठाएंगे और फिर द्रुपद और शिखंडी को मृत्युदंड देंगे। इधर द्रुपद ने एकांत में आकर के अपनी स्त्री से कहा, इस कन्या के विषय में हमसे बड़ी मूर्खता हो गई, अब क्या करें, सेना चारों तरफ है और अब इस कन्या की परीक्षा होने वाली है, अब क्या करें। शिखंडी के विषय में सबको शंका हो रही कि कन्या है और परीक्षा होने पर और बात प्रकट हो जाएगी, क्या करें। दशारण देश के राजा हिरण्यवर्मा तो मुझे धोखा दे दिया, इस बात को लेकर बड़े नाराज हो गए और वो तो सर्वनाश करने पर तुले हुए हैं, अब तुम बताओ क्या करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रानी ने कहा, सत्पुरुषों ने देवताओं का पूजन करना संपत्तिशालियों के लिए भी श्रेयस्कर माना है, फिर जो दुख के समुद्र में गोते खा रहा हो उसको तो देवाधिदेव महादेव की पूजा करनी चाहिए। आप देवाराधन के लिए ब्राह्मणों की पूजा करें और ऐसा संकल्प करें कि दशारण देश के राजा युद्ध किए बिना ही लौट जाए और अपने शिखंडी की परीक्षा किए बिना ही चले जाए, फिर देवताओं के अनुग्रह से आपका सब काम ठीक हो जाएगा। देवताओं की कृपा और मनुष्य का उद्योग, ये जब दोनों मिल जाते हैं तो फिर काम सफल हो जाता है, यदि इनमें विरोध रहता है तो सफलता नहीं मिलती। अतः आप मंत्रियों के द्वारा नगर के शासन का सुप्रबंध कर दो और देवताओं का यथेष्ट पूजन करो। इधर माता पिता को इस प्रकार बात करते शोकाकुल देखते हुए शिखंडी को भी बड़ी शर्म आई। वो शिखंडी सोचने लगी, ये दोनों मेरे कारण से कितने दुखी हो रहे हैं, इसलिए माँ बाप के दुख को दूर करने के लिए मैं अपना प्राण त्याग कर दूं, कितना अच्छा रहेगा। ऐसा सोचकर वह घर से निकल गई और जंगल में एकांत स्थल पर चली गई। वहां सोचा कि यहां जंगल में कोई देखने वाला नहीं, प्राणों की आहुति दे दूं। उस वन के अंदर स्थूणाकर्ण नाम का एक समृद्धिशाली यक्ष रहता था, वहां उसका एक भवन बना हुआ था। शिखंडी ने सोचा कि वन में इतना अच्छा महल क्या है इसमें, तो वो बड़ा साहस करके चली गई और वहां रहने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे निराहार करने से सूखता चला गया। एक दिन स्थूणाकर्ण अपने महल में आया और उस स्त्री को देखा, पूछा, कन्ये तू ऐसा भूखा रहकर अपने शरीर को सुखाना चाहती, क्या बात है, तेरा अनुष्ठान किस उद्देश्य से है, मुझे बता, मैं तेरा काम कर दूंगा। शिखंडी ने बार बार कहा, आपसे ये काम नहीं हो सकेगा, नहीं नहीं मैं यक्ष हूं, मुझे बताओ, मैं कुबेर का सेवक हूं, वरदान देने का सामर्थ्य रखता हूं, तुम जो कहो वो मैं काम कर दूं। मैं तुझे न देने योग्य भी वरदान दे सकता हूं। तब शिखंडी ने अपना सारा वृत्तांत सुनाया कि ऐसे मुझे पुरुष मान करके शादी कर दी, मेरे पिता माता बड़े संकट में पड़ गए। अरे इतनी सी बात है, ये काम कोई बड़ा नहीं है। मैं तुम्हें एक शर्त है, कुछ समय के लिए पुरुषत्व दे सकता हूं, किंतु ये सत्य प्रतिज्ञा कर जाओ कि अभी मैं तुम्हारा स्त्रीत्व अपने में ले लेता हूं और मेरा पुरुषत्व तुम्हें दे देता हूं, थोड़े दिनों के बाद में तुम ये मेरे से वापस अपना स्त्रीत्व ले लोगे, तुम्हारे पिता का संकट दूर हो जाएगा। शिखंडी का बिल्कुल ठीक है, मैं मान लेता हूं, तो उसका पुरुषत्व तुमको लौटा दूंगी और मेरा स्त्रीत्व वापस ले दूंगी। तब तक हिरण्यवर्मा राजा अपने नगर चला जाएगा, फिर मैं वापस कन्या हो जाऊंगी, तुम पुरुष हो जाओगे, पिता माता का संकट टल जाएगा। दोनों ने प्रतिज्ञा कर ली और वो तो स्त्री बन गया और वो पुरुष बन गई। स्थूणाकर्ण यक्ष ने स्त्रीत्व धारण किया और शिखंडी को यक्ष का देवीत्व रूप प्राप्त हो गया। अब वो शिखंडी बड़ा प्रसन्न हुआ और पंचाल नगर में अपने पिता के पास गया और एकांत में कहा कि जो जो मेरे साथ बात हुई बता दी, क्या आप बोलो मैं पुरुष हूं। द्रुपदी ने सिर पर हाथ रखा, बेटा तुमने तो हमारी आज बहुत लाज बचाई। इससे द्रुपदी को बड़ी प्रसन्नता हुई, आशीर्वाद दिया और भगवान शंकर की बात याद आई। तब उन्होंने दशारण देश के राजा के पास दूत भेजवाया और कहा, क्यों व्यर्थ में युद्ध करते हैं आप? किसके कहने से कहते हैं कि मेरा लड़का लड़की है? नहीं, मेरा पुत्र पुरुष है, लड़की नहीं है। यदि किसी व्यक्ति ने आपसे झूठ बात कही है तो उसको आप न माने, मेरी बात पर विश्वास करें। तब राजा द्रुपद का संदेश पाकर के दशारण देश के राजा ने शिखंडी की परीक्षा के लिए कुछ लड़कियों को भेजा। उन्होंने उसके वास्तविक स्वरूप को जान करके बड़ी प्रसन्नता से सब बातें हिरण्यवर्मा को सुना दी और कह दिया कि कौन कहता है राजकुमार शिखंडी पुरुष है, वो कन्या नहीं है। तब राजा हिरण्यवर्मा बड़ी प्रसन्नता से अपने समधी द्रुपद जी के पास आया और हर्ष से उनसे मिला और अपने लिए गलती के लिए क्षमा याचना की और साथ ही साथ हाथी घोड़े गौर बहुत से दास दासियां रत्न वगैरह भेंट किए और द्रुपद ने भी उनका सत्कार किया। और जिन दूतों ने ये बात कही उनको बड़ा झिड़क करके जवाब दिया। इसी बीच किसी दिन यक्षराज कुबेर घूमते घूमते स्थूणाकर्ण के पास पहुंच गए। स्थूणाकर्ण का रंग बिरंगे सुगंधित पुष्पों से सजा हुआ वो महल, उसे देखकर यक्षराज ने अपने अनुचर से कहा, ये सजा हुआ महल किसका है? स्थूणाकर्ण का ही है। हाँ, वो मंदवती मेरे पास उपस्थित होने के लिए नहीं आ रहा है, मेरा सेवक होकर मेरे पास नहीं आया। यक्षों ने कहा, महाराज नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि महाराज द्रुपद देश की शिखंडिनी नाम की कन्या है, इस स्थूणाकर्ण ने अपना पुरुषत्व उसको दे दिया और उसका स्त्रीत्व इसने ले लिया। अब ये स्त्री बना हुआ है तो स्त्री का तो ये धर्म होता है अपने घर से बाहर न निकलना, किसी पुरुष से न मिलना, ये उसका धर्म होता है। इस संकोच के कारण आपकी सेवा में उपस्थित नहीं हुआ, अब आप जैसा करें वैसा करें। कुबेर ने कहा, अच्छा उसको मेरे सामने हाजिर करो और उसे मैं दंड दूंगा, बुलाओ उसको। तब दूत गए स्थूणाकर्ण के पास, वो स्त्री बना हुआ बड़े संकोच के साथ कुबेर जी के पास आकर खड़ा हो गया और अपने घूंघट निकाल लिया। कुबेर ने श्राप दिया, अच्छा तुझे मालूम है कि मूलतः मैं पुरुष नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, थोड़े दिन के लिए मैं स्त्री बनी हूं और अब तो घूंघट निकाल करके वैसा स्वांग कर दिए, जाओ अब तू स्त्री स्त्री रहेगी, अब तू पुरुष बन ही नहीं सकती। दूसरे यक्षों ने प्रार्थना की, महाराज इसकी तो थोड़ी सी अवधि है, कोई अवधि निश्चित कर दो, सदा के लिए स्त्री क्यों बनाओ। अच्छा 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 ठीक है, ये महाभारत का युद्ध होगा और डर जाएगा, तब ये अपने आप स्वतः ही पुरुष हो जाएगा, तब तो स्त्री पुरुष का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। अब कुबेर सब यक्षों के साथ अलकापुर चले गए। इधर प्रतिज्ञा का समय पूरा होने पर शिखंडी स्थूणाकर के पास पहुंचा और कहा कि मेरा पिता का सम्मान हो गया, अब आप अपना स्त्रीत्व ले लीजिए, आप अपना स्त्रीत्व मुझे दे दीजिए, मेरा पुरुषत्व आप जाए, आप अपना पुरुषत्व ले लीजिए। तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ स्थूणाकर, प्रसन्न होकर कहने लगा बात तो ठीक है, भगवान ने मुझे पुरुष बनाया था, मैंने तुम्हारे हित के लिए स्त्री बनकर के कुबेर के सामने मैं लज्जा के भाव से खड़ी रही, तो उन्होंने मुझे ऐसा वरदान दे दिया, अब मैं वापस पुरुष नहीं हो सकता, जब तक तुम युद्ध के अंदर जीवित हो तब तक मैं इस प्रकार से अपना पुरुषत्व प्राप्त नहीं कर सकता। शिखंडी भी प्रसन्न होकर चला गया। इस प्रकार सारा काम बन गया, द्रुपद भाई बंधुओं के साथ बड़ा प्रसन्न हो गया और द्रुपद ने इसी शिखंडी को धनुर्विद्या सीखने के लिए द्रोणाचार्य को सौंप दिया। फिर शिखंडी और धृष्टद्युम्न ने तुम्हारे साथ ही ये सब प्रकार के शस्त्रों को ग्रहण करना, धारण करना, प्रयोग करना, प्रतिकार करना, ये सब धनुर्विद्या इन्होंने प्राप्त की है। मैंने मूर्ख बहरे और अंधे से दीख पड़ने वाले जो गुप्तचर इन द्रुपद के पास नियुक्त कर रखे थे, उन्होंने मुझे सब प्रकार की बातें बताई। गुप्तचर हो वे अंधे होने चाहिए, मूर्ख होने, लोगों को मूर्ख दिखने चाहिए, बहरे दिखने चाहिए, भाई जैसे कोई समझता ही नहीं है, ऐसे ऐसे रहने चाहिए, इससे लोग नहीं समझते। इस प्रकार द्रुपद का पुत्र महारथी शिखंडी, पहले स्त्री फिर पुरुष, सब घटना मुझे मालूम, फिर भी मैंने ये बात प्रकट नहीं की। वह यदि हाथ में धनुष लेकर मेरे सामने आएगा न तो एक क्षण भी उसकी ओर देखूंगा और न उस पर शस्त्र चलाऊंगा, चाहे वो मेरे शस्त्र मार दे भले। यदि भीष्म स्त्री की हत्या करेगा तो साधुजन क्या कहेंगे, अरे भीष्म जैसा शास्त्र ज्ञानी भी स्त्री को मारता है, बड़ी मेरी निंदा होगी, मेरे कुल की निंदा होगी, इसलिए मैं उसको नहीं मार सकता। भीष्म की बात सुनकर दुर्योधन कई देर तक विचार करता रहा और फिर उसे भीष्म की बात अच्छी लगी। संजय ने कहा, हे महाराज, इस प्रकार भीष्म और दुर्योधन की बातें होती गई। प्रातःकाल हुआ, दुर्योधन ने पितामह भीष्म से पूछा, दादाजी पांडुनंदन युधिष्ठिर की जो असंख्य पैदल हाथी घोड़े और महारथियों से परिपूर्ण प्रबल वाहिनी हम लोगों से युद्ध करने के लिए तैयार सेना है, इसे आप कितने दिन में नष्ट कर सकते हैं? आचार्य द्रोण, कृपाचार्य कर्ण और अश्वत्थामा को इसका नाश करने में कितना समय लग सकता है? मुझे बहुत दिनों से ये बात जानने की इच्छा है, वो बताइए। भीष्म ने कहा कि देखो, अपने शत्रु के बलाबल का विचार तो करना ठीक है, युद्ध में मेरा जो अधिक से अधिक पराक्रम, शस्त्र बल और भुजाओं का सामर्थ्य, सुनो, धर्म युद्ध के लिए ऐसा निश्चय है कि सरल योद्धा के साथ सरलता पूर्वक और माया युद्ध करने वाले के साथ माया युद्ध करना चाहिए। इस प्रकार युद्ध करके मैं प्रतिदिन पांडव सेना के 10,000 योद्धा और 1,000 रथियों का संहार कर सकता हूँ। यदि मैं अपने महान अस्त्रों का प्रयोग करूं तो 1 महीने में समस्त पांडव सेना का संहार हो सकता है। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी से कहा, गुरुवर आप बताइए कितने दिनों में नष्ट कर सकते हैं? द्रोणाचार्य ने कहा कि देखो दुर्योधन, अब मैं बूढ़ा हो गया, फिर भी भीष्म के समान 1 महीना मुझे लग सकता है, एक महीने में भस्म कर सकता हूं। कृपाचार्य जी से पूछा, कृपाचार्य जी ने कहा 2 महीने मेरे को लग सकते हैं। अश्वत्थामा ने कहा 10 दिन में पांडव सेना का संहार कर सकता हूं। अंत में दुर्योधन ने अपने प्राण प्रिय मित्र के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कर्ण बताओ तुम कितने दिनों में पांडव सेना का संहार कर सकते हो? मित्रवर मैं 5 दिन में सारी सेना का सफाया कर सकता हूं। कर्ण की बात सुनते ही भीष्म जी खिलखिलाकर हंसे और कहे, अरे सूत पुत्र, जब तक रणभूमि में तेरे सामने कृष्ण सहित अर्जुन का रथ नहीं आता है तब तक तू इस प्रकार के अभिमान की बातें कर ले, क्योंकि अभी तो कोई कृष्ण और अर्जुन सुनने वाले नहीं है। दुर्योधन को बहका दे, मनमाना बकवाद कर ले, लेकिन इन्हें सामने आएंगे तब पता चलेगा। कर्ण को बड़ा बुरा लगा, दुर्योधन की ओर देखने लगा कि मेरा इतना अपमान करते हैं आपके पिता में भीष्म। दुर्योधन ने इशारा कहा, ये तो सहन करना पड़ेगा। जब कुंती नंदन युधिष्ठिर ने ये समाचार सुना कि भाई इस प्रकार से कोई 1 महीने में तो कोई 2 महीने में तो कोई 10 दिन में तो कोई 5 दिन में हमको मार सकते हैं, उनके भी गुप्तचर थे पता चला, उन्होंने अपने भाइयों को बुलाकर पूछा कि भाइयों आज कौरवों की सेना में मेरे गुप्तचरों ने समाचार दिया है और उन्होंने समाचार भेजा है। समाचार में यह है कि दुर्योधन ने भीष्म जी से पूछा कि कितने दिनों में नष्ट कर दोगे? तो 1 महीने में। द्रोणाचार्य ने कहा 1 महीने में, कृपाचार्य ने कहा 2 महीने में, अश्वत्थामा ने 10 दिन में और कर्ण ने कहा कि 5 दिन में। अतः अर्जुन अब तुम बताओ कि तुम्हारी बलाबल की क्या स्थिति है, तुम कितने समय में शत्रुओं का संहार कर सकते हो? युधिष्ठिर की बात पूछने पर अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखा, मुस्कुराया और कहा, मेरा तो ऐसा विचार है कि श्री कृष्ण की सहायता से मैं अकेला ही केवल 1 रथ पर चढ़कर क्षण भर में देवताओं सहित 3 लोक और भूत भविष्य वर्तमान सभी जीवों का प्रलय कर सकता हूं। पहले किरात वेशधारी भगवान शंकर के साथ युद्ध होते समय उन्होंने जो मुझे प्रचंड पाशुपतास्त्र दिया था वो मेरे पास है, किसी कौरव सेनक के पास नहीं है। भगवान शंकर प्रलय पूर्वक संपूर्ण जीवों का संहार करने के लिए पाशुपतास्त्र का प्रयोग करते हैं। मेरे सिवा न भीष्म न द्रोण न कृपाचार्य न अश्वत्थामा को ज्ञान है, कि कर्ण को तो क्या ज्ञान होगा? भगवान मुस्कुरा रहे हैं। तथापि इन दिव्यास्त्रों से संग्राम भूमि में मनुष्यों को मारना उचित नहीं, हम तो सीधे साधे युद्ध करेंगे, शत्रुओं को जीतेंगे। इसी प्रकार आपके सहायक ये अन्य वीर भी पुरुषों में सिंहों के समान हैं, ये सब युद्ध के लिए उत्सुक हैं, कोई इन्हें युद्ध में जीत नहीं सकता है। अब वो जो 1 महीना 2 महीना 10 दिन 5 दिन कहते हैं वो अपने ढंग से कुछ भी कहे, आप उनकी बात के ऊपर इतना गंभीरता से हमसे मत कहलवाइए। आप तो हम सब वीरों को आशीर्वाद दीजिए, हमारे पास शिखंडी युयुधान धृष्टद्युम्न भीमसेन नकुल सहदेव युधामन्यु उत्तमौजा विराट द्रुपद शंख घटोत्कच और उसका पुत्र अंचन पर्वा अभिमन्यु द्रौपदी के 5 पुत्र तथा स्वयं आप 3 लोगों को नष्ट करने में समर्थ हैं, इसलिए आप किसी की ओर देखने की बिल्कुल भी विचार की बात ही छोड़ दीजिए। थोड़ी देर में बात करते करते प्रभात हो गया, दुर्योधन की आज्ञा से उसके पक्ष के राजा लोग पांडवों पर चढ़ाई की तैयारी करने लगे, स्नान वगैरह करके श्वेत वस्त्र और अच्छे अच्छे मोतियों की माला धारण करके पहले यज्ञ किया, अस्त्र शस्त्र धारण करके स्वस्ति वाचन करवाया
और फिर अवंती नरेश के राजा विंद और अनविंद, के देश के राजा वाल्मीकि सब द्रोणाचार्य के नेतृत्व में चलने लगे। अश्वत्थामा, भीष्म, जयद्रथ, गांधार राज शकुनी, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व और उत्तर की ओर के राजा, पर्वतीय नृपतिगण तथा शक, किरात, यवन, शिबी, वसाती जाति के राजा लोग अपनी अपनी सेना के सहित दूसरा दल बनाकर चले। उनके पीछे कृतवर्मा, त्रिगर्तराज, भाइयों से घिरा हुआ दुर्योधन, शल, गुरिश्रवा, शल्य, कौशलराज, वृहद्रथ, इन सब ने कूच किया। महाबली धृतराष्ट्र पुत्र कवच धारण करके कुरुक्षेत्र के पिछले आधे भाग में ठीक ठीक व्यवस्था पूर्वक खड़े हो गए। दुर्योधन ने अपने शिविर को इस प्रकार सुसज्जित कराया मानो हस्तिनापुर का महल ही यहाँ आ गया हो। बहुत चतुर नागरिकों को भी उसमें नगर में कोई भेद नहीं जान पड़े ऐसी व्यवस्था करवाई। पास में सैकड़ों हजारों डेरे डाल भी दिए। 500 योजन घेरे के रणांगण में अपने सैकड़ों सैनिक छावनियां डाल दी और राजा लोग बड़े उत्साह के साथ वहां ठहर गए। इसी प्रकार युधिष्ठिर ने भी धृष्टद्युम्न आदि वीरों को रणभूमि में चलने की आज्ञा दी। युधिष्ठिर के हाथी, घोड़े, पैदल वाहन, इनकी जो आवाजें, इनका जो उत्साह, इनके पास खाने पीने की भोजन आदि की सामग्री देख करके शत्रु सेना भी अंदर ही अंदर कांपने लग गई। भीमसेन, सात्यकी, अर्जुन एक दूसरे सैन्य समुदाय के साथ चलने लगे। इनके साथ भी बड़ा आनंद का, हर्ष का नाद हो रहा है। इनकी आवाजों से आकाश गूंजने लग गया है। थोड़ी देर में राजा युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को भ्रम में डालने के लिए अपनी सेना का दोबारा संगठन किया। उन्होंने द्रौपदी, द्रौपदी के पुत्र अभिमन्यु, नकुल, सहदेव, समस्त प्रभद्र वीरों को 10,000 घुड़सवार, 2,000 गजारोही, 10,000 पैदल, माने उन्होंने सेना में बड़ा थोड़ी देर में उथल पुथल की ताकि वो शत्रु सेना हृदय से टूट जाए। सब सेना के बीच में श्री कृष्ण और अर्जुन बड़े उत्साह के साथ चल रहे थे और कृष्ण अर्जुन को यूं पीठ थपथपा करके पूरा उत्साह दिला रहे थे। अर्जुन के इस उत्साह दिलाने पर सारी सेना में बड़ी उमंग थी। एक सैन्य समुद्र के बीच में राजा युधिष्ठिर चल रहे थे। सात्यकी के साथ भी बहुत लोग थे। इस प्रकार दोनों प्रकार की सेनाएं अपनी अपनी जगह आकर खड़ी हो गई। ये उद्योग पर्व समाप्त हुआ। अब कल से भीष्म पर्व चलेगा। भीष्म पर्व में ही अपनी गीता जी आएगी। देखो सेठ जी ने ये संक्षिप्त महाभारत किया है पर गीता का संक्षेप नहीं किया है। गीता में एक एक श्लोक का अर्थ आया है तो अब गीता का श्लोक आएगा। ये अभी तो नहीं आएगा, दो एक दो दिन लग सकते हैं पर हाँ गीता का आएगा ये संभवतः कल या परसों से। तो आप लोग उकताना नहीं क्योंकि कथानक तो कुछ है नहीं, उपदेश ही उपदेश है। पर महाभारत के इस क्रम के अंतर्गत हम लोग गीता सुनेंगे। इसका बड़ा महात्म्य है। बड़े प्रेम से गीता का अपने ये अर्थ सहित श्रवण है, ये श्रवण करते रहेंगे। गीता के अंदर अपने को कुछ दिन लग सकते हैं, 3-4 दिन लग सकते हैं। रा
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण।